शांति। पवित्रता की प्योरिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। कल ही हमने मुरली में सुना, बाबा की मुरली में, कि अगर सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनना है तो क्या करना पड़ेगा। कल की मुरली याद है, मीठे बच्चे याद है ना, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा पावन बनो। और पूरा पावन बनने वाले क्या होंगे, धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे, है ना। यही था ना कल की मुरली। तो सचमुच पावनता कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता है। अगर पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है, और पवित्रता नहीं तो, जैसे कहते हैं, अगर श्वास रुक जाए तो क्या कहते हैं, किसी आदमी का, किसी मनुष्य का सांस आना रुक जाए तो क्या कहेंगे, कि वह आदमी मर गया है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, उसका जीवन काल पूरा हो गया। तो हम ब्राह्मणों का जीवन ही क्या है, हमारा श्वास ही पवित्रता है। अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम क्या नहीं है, क्या नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, है ना। तो इसकी बहुत गहराई है। आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि ब्राह्मण जीवन का श्वास कैसे पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की महानता ही पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का क्या कहें, और ब्राह्मण पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है। तो हम इसको हम गहराई से समझते हैं कि पवित्रता क्या है, फिर बाद में पवित्रता की प्योरिटी और पर्सनैलिटी क्या है, और इसको धारण कैसे करें, वो हमारे जीवन में आए कैसे। पवित्रता की बात तो की, किंतु हमारे जीवन में आए क्या, प्रैक्टिकल पवित्रता क्या चीज है, और कैसे वो पवित्रता हमारे जीवन में आए, प्योरिटी कैसे आए। इवन तपस्या जो कहा जाता है, तपस्या शब्द है, तपस्या का मतलब ही है, सफल तपस्वी का मतलब ही क्या है, सफल तपस्वी माना जिसके जिसके दिल में, जिसके मन में एक ही लगन हो, एक ही बाप से लगन में मगन हो, एक बाप के सिवाय उसकी बुद्धि में कुछ और ना आए, वो है सफल तपस्वी। और पुरुषार्थी तपस्वी, वो पुरुषार्थ करते हैं, अमृतवेला भी करेंगे, मुरली भी सुनेंगे, अटेंशन भी रखेंगे, किंतु उनके जीवन में एक नहीं बहुत सारी बातें रहती। पवित्रता का अर्थ क्या है, पवित्रता का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरों के भी सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। अब हमारा सत्य स्वरूप कौन सा है, हमारा सत्य स्वरूप क्या है, वो हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हमारा सत्य स्वरूप है, हमारा आदि देवता स्वरूप भी सत्य स्वरूप है। बाकी जो द्वापर से स्वरूप हमारा शुरू हुआ वो सत्य है क्या, सत्य है, वो असत्य है। कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। शिव मना परमात्मा, शिव परमपिता परमात्मा शिव सदा सत्य है, अर्थात सदा ही अविनाशी है, सदा ही एटर्नल है, सदा ही सोल कॉन्शियस है, है ना। उनको कभी भी देहवान आता है कभी, शिव बाबा को देह ही नहीं उनके पास, तो वो एटर्नल है, पूरा कल्प कल्प कल्पांतर, सदा ही देही अभिमानी है, सदा ही विदेही है, सदा ही अशरीरी है। और हम आत्माएं क्या है, आधा कल्प सत्य है और आधा कल्प असत्य है। मतलब आधा कल्प हम देही मानी रहते हैं, सोल कॉन्शियस रहते हैं, भले हम जन्मते और मरत जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, किंतु उस भान से परे रहते हैं, संबंध भी होते हैं, वहां पति पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, किंतु हमारे अंदर कोई देह का भान नहीं है। जबकि आधा कल्प पूरा होते ही, द्वापर युग शुरू होते ही हमारे अंदर देह भान आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, और देह भान आते सबसे पहला विकार कौन सा आता है, काम विकार आता है। बाकी विकार, काम विकार से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से और फिर काम विकार से लोभ पैदा होता है। आप अपने अंदर चिंतन करके देखना कैसे पैदा होता है, क्योंकि टॉपिक ही है नहीं तो इस पर हम आगे बात करते। काम विकार से ही क्रोध पैदा होता है, काम विकार से ही लोभ पैदा होता है, काम विकार से ही मोह पैदा होता है और काम विकार से ही अहंकार पैदा होता है। ये पांचों विकार, चारों विकार जो है इसकी ही देन है। इसलिए कहा जाता बाबा ने, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए तो उन्होंने हमको काम चिता से उतार के कहां रख दिया, कहां बिठाया, ज्ञान चिता पे बिठाया है ना। तो काम चिता मना काम हम चिता निरंतर होती है ना, चिता निरंतर होती है। हम कोई ना कोई विकार की अग्नि में जलते रहे, चाहे मुख्य काम विकार की अग्नि में जलते रहे या कभी क्रोध की अग्नि में जलते रहे, कभी या लोभ की अग्नि में, लोभ पैसे का लोभ या नाम मान शान का लोभ भी है ना, या उसी में अग्नि में जलते रहे या मोह की अग्नि में जलते रहे या अहंकार की अग्नि में जलते रहे, कोई ना कोई विकार के वश होकर के हम रहे है ना, निरंतर दिन रात स्वप्न भी उसी तरह के आते रहे, संकल्प भी वही, बोल भी वही, कर्म भी वही और संबंध संपर्क में भी यही विकार और स्वप्न में भी यही विकार, हमारा जीवन ही यह बन गया था। अब बाबा ने हमको उतार के क्या किया, काम चिता से उतार के हमें ज्ञान चिता पे बिठा दिया। ज्ञान चिता माना ये ज्ञान, माना ये मुरली, बाबा की मुरली याद है, दो तीन चार दिन पहले की मुरली थी कि जो मुरली वाले है ना दिखाते हैं ना, बाबा कृष्ण को मुरली वाला दिखाते हैं ना, मुरली बजाते दिखाते हैं है ना। तो बाबा ने दिखाया कि जो मुरली का मनन चिंतन मंथन करता रहता है वो क्या बन जाता है, वो विष्णु बन जाता है। विष्णु माना जिसमें विष का एक अणु भी नहीं हो, विष माना ये पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, जिसमें विष का एक अणु भी ना हो, एक अंश मात्र भी ना हो है ना, जरा भी नाम निशान भी ना हो, वो है विष्णु। और विष्णु क्या, विष्णु को कहां दिखाते हैं, विष्णु को कहां दिखाते हैं, शीत सागर में और किस पे लेटा हुआ, गद्दे पे लेटा हुआ नहीं, शेष सैया, नागों की शैया पे लेटा है। ये पांच विकार रूपी जो शेष मन विकार है, नाग हैं, उनको अपनी शैया बना करके उसके ऊपर लेटा हुआ है और वो उसकी रक्षा भी कर रहे हैं फन फैला के ना, मतलब उनको इतना वश कर लिया उसने। तो ये ज्ञान, ये मुरली है बाबा की जो हम रोज सुनते हैं, जैसे आज की मुरली हमने सुनी, सुबह सुबह उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा, सारा दिन किसमें रहेंगे, अपार खुशी में रहेंगे है ना, अपार खुशी में रहेंगे। तो ये जो बाबा की मुरली है ना, ये जो बाबा का जो महावाक्य है, एक एक लाइन बाबा की मुरली के एक एक लाइन, यही ज्ञान है, यही मुरली है। और योग क्या है, ये तो ज्ञान है, मुरली तो ज्ञान है, किंतु योग क्या है, योग माना क्या है, इस बाबा की मुरली का एक एक लाइन का मनन चिंतन मंथन करना, सिमरण करना, इसी के द्वारा क्या बनता है, ये पांचों विकार क्या बन जाते हैं हमारे लिए, क्या बन जाते हैं, हमारी शेष शैया बन जाती है, हमारे वश में आ जाते हैं, हमारे कंट्रोल में आते हैं। तो ज्ञान से योग है और योग से पवित्रता है ना। हां, पहले भी पवित्रता चाहिए, पहले हम जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ब्राह्मण, हम स्थूल पवित्रता धारण करते हैं, तन की पवित्रता धारण करते हैं, फिर जैसा जैसा हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते, इस मुरली को अपना जीवन बना लेते, त्यों त्यों हमारे मन में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में, हमारे संबंध संपर्क में, भले हम कार्य सारे करते हैं, घर में भी रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं, अब डॉक्टर्स जो होते हैं, बाबा के बच्चे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं ना, क्या वो ऑपरेशन नहीं करते? क्या वो पेशेंट्स को नहीं देखते हैं? देखते नहीं देखते हैं, है ना? घर में उनके बच्चे हैं तो बच्चों को प्यार करते हैं नहीं करते हैं? उनकी केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कि तू सब कुछ करने के बाद भी पवित्र रहना, ऐसा कीचड़ में रह के कमल पुष्प के समान न्यारा प्यारा रहना। तो पवित्रता का अर्थ क्या है? अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर, अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित होकर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना। सत्य माना उनके भी अनादि और आदि स्वरूप को देखो, क्योंकि हम बच्चे, हम लोगों का संबंध संपर्क, ये बात भी ध्यान रहे, ये भी बाबा ने एक मुरली में एक बात बताई थी कि हमारा जो अधिकतर संबंध संपर्क है, हमारे साथ जो कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे ऑफिस में या घर में, या हमारे संबंधी हैं, वो भी सभी देवी देवताओं कुल की आत्माएं। 33 करोड़ देवी देवताओं गाय आए ना, वो सबके सब देवी देवता ही हैं। आज नहीं तो कल वो बाबा के बच्चे बनेंगे, भले वो लास्ट में आएंगे, कि तो हैं वो भी पवित्र आत्माएं, पवित्र बनने वाली आत्माएं, समझने वाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध संपर्क में आए इसलिए हैं क्योंकि उनका उनका हमारे परिवार से, हमारे से कहीं सा कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। तो उनका भी अनादि आदि स्वरूप देखो और उसी स्वरूप में रहकर व्यवहार करो। और इसकी पवित्रता की गहराई में जाएं तो पवित्रता का अर्थ क्या है, और क्या अर्थ है, गहरा अर्थ क्या है, बाबा ने जो मुरली में समझाया है, पवित्रता माना अपवित्रता का जरा भी अंश मात्र भी ना हो। अर्थात बाबा ने कहा एक मुरली में, लगा किसी से लगाव रखना भी, किसी देहधारी से, लौकिक या अलौकिक, किसी अलौकिक देहधारी से, मतलब लौकिक माना अपना लौकिक परिवार में, या अलौकिक इवन ब्राह्मण परिवार में भी, किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाए आपको, वो तो बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात करते हैं, वो बहन जी तो बहुत अच्छे हैं, है ना, इवन ये भी लगाव हो गया किसी के प्रति, उनमें अच्छाई या उनमें विशेषता कौन सी वाली है, कौन सी विशेषता है? बाबा की दिव्य विशेषता है, बाबा के ज्ञान को सुना रहे हैं, टच करने वाला भी कौन उनको? एक्चुअली क्लास कराने वाले भाई बहन यहां बैठ के क्लास नहीं कराते हैं, बाबा कराता है, बाबा उनके द्वारा टच करता है। मुझे भी 1 घंटे पहले बुखार था, अभी तक ना 1 घंटे पहले तक ना, मुझे भी 2 दिन से बुखार आ रहा है। ऐसे देखो डॉक्टर को, क्या डॉक्टर को भी बुखार आता है क्या? डॉक्टर्स को भी बुखार आता है ना। अभी 1 घंटे पहले तक मुझे बुखार था और मैंने इनको हाँ भी नहीं की ना भी निकल, इन्होंने कहा था क्लास करानी, तो मैंने कहा वो सबसे कल तक बुखार उतर जाएगा, कि तू नहीं उतरा, है ना। फिर भी मैंने देखा कि कई बार मेरे साथ ऐसे पहले हुआ है कि कई बार मैं जब टाइम पर, टाइम से पहले कोई तकलीफ होगी भी ना, उस टाइम पर हिम्मत आ जाती है करने की ना, और हिम्मत आ जाती है, तो मेरे 4:45 बजे मेरे मन में संकल्प आया, नहीं मैं जाता हूँ, तैयार होकर जाता हूँ। तो फिर मैं तैयार होके, हालांकि लेट आया, फिर भी पहुंच गया, है ना। तो मेरे अगर कोई कहे ना मुझे 4:45 बजे कहें क्लास करा दो, कुछ करना है बोलना है, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था कि तू करा। तो मैं ये आपके सामने एग्जाम्पल इसलिए रख रहा हूं कि कराने वाला, समझाने वाला कौन? स्वयं शिव बाबा। तो ये जो आपको ध्यान रखने की बात है, किसी की भी लगाव किसी व्यक्ति की तरफ हो जाना, ये भी अपवित्रता है। क्योंकि जिससे लगाव आपका हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति से हो जाएगा, जब भी आप बाबा को याद करने बैठोगे वो याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा, तो अपवित्रता हुई नहीं हुई। किसी व्यक्ति की तरफ झुकाव हो गया तो आप बाबा को याद करने बैठोगे वही व्यक्ति याद आएगा। अगर आप किसी के प्रभाव में आ गए तो वो ही व्यक्ति याद आएगा जब भी बाबा को याद करने बैठोगे, क्योंकि बाबा सूक्ष्म है और वो व्यक्ति क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म है कि स्थूल है? स्थूल है। तो स्थूल सहज याद आता है कि सूक्ष्म सहज याद आता है? बोलो कौन सा याद आता है सहज? जिसका चित्र सामने है वो सहज याद आता है, जिसका चित्र विचित्र हो वो सहज याद आता है? जिसका चित्र हो ना हमारे सामने वो सहज याद आएगा ना, विचित्र वाला तो मुश्किल है ना, याद आना मुश्किल है। तो हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति लगाव, झुकाव, प्रभाव या टकराव होना भी अपवित्रता है। सच्चा ब्राह्मण वो जिसके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ना लगाव हो, ना झुकाव हो, ना प्रभाव हो, ना टकराव हो। बाबा से ही हमारा लगाव हो, बाबा से ही हमारा झुकाव हो, बाबा के ही प्रभाव में आए, और टकराव तो किसी से भी ना हो। फिर चलो इसकी परिभाषा में और आगे चलते हैं। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इस हिस्ट्री रूपी ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट बना हुआ है। आज कोई व्यक्ति ने मुझे गाली दी, मेरी गिलानी की, मेरी इंसल्ट की, ये ठीक बात हुई गलत बात हुई? ठीक है गलत है बताओ? क्या समझते हैं, ठीक है गलत है? ठीक है कि जरूर पिछले जन्म में मैंने, पिछले ऐसी जन्म में या पिछले जन्म में उसकी जरूर इंसल्ट की होगी, उसको इग्नोर किया होगा, उसकी ग्लानी की होगी। मैंने उसकी एक बार ग्लानी की, अगर एक जन्म पहले, दो जन्म पहले, वो मेरी 10 बार ग्लानी करेगा। एक्यूरेट हुआ नहीं हुआ? कुछ भी हुआ इस ड्रामा में, इस ड्रामा में अब तक जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है या आपको होने का अंदेशा है, वो एक्यूरेट हुआ है। इस ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, उसमें क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे करना भी अपवित्रता है। ड्रामा के डायरेक्टर को पसंद है ड्रामा और उस पर हम क्वेश्चन उठाएं, यह भी अपवित्रता है। क्योंकि जब हम ड्रामा की किसी बात पर भी क्या, क्यों, कब, कैसे करते हैं, तो वो क्या, क्यों, कब के प्रश्न अंदर हमारे अंदर ठहर जाते हैं, और जब बाबा को याद करने बैठते हैं, हमारी याद एक रस नहीं रह सकती है। वो क्या, क्यों का जो प्रश्न अंदर है ना, कैसे का प्रश्न अंदर है, वो बार बार बीच में हमारी याद को ब्रेक करता है। तो इसलिए कहा जाता है, मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क और स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश ना हो, किसी विकार का अंश भी ना हो, तब उसको पवित्रता कहेंगे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता का अर्थ है कि हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, उसमें कोई भी विकार का अंश मात्र ना हो। खाली काम विकार नहीं, खाली ब्रह्मचर्य नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों का अंश ना हो, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। और सफल तपस्वी की निशानी क्या है? सफल तपस्वी वो है जिनमें जो संपूर्ण पवित्र है, जिनमें जरा भी इनका कोई अंश है तो वो पवित्र नहीं है। अगर हम अब आगे बात करते हैं प्योरिटी की, पर्सनैलिटी क्या होती है, या इससे पहले भी एक बात और कर लेते हैं कि पवित्रता है, मन बुद्धि मेरी पवित्र है। पवित्रता का अर्थ एक और है कि पवित्रता अर्थात जिसकी दिल में, दिल माना ये दिल नहीं, ये तो बॉडी का दिल है, शरीर का दिल है, पंप है, ये तो सिकुड़ने वाला, फैलने वाला पंप है जो दिन रात चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं, इसके चारों चैंबर्स में खून बहता रहता है। मैंने तो बहुत बार दिल देखा है, खोला हुआ भी, खोल के भी देखा है, खुला हुआ भी देखे है ना, तो इसके तो चारों चैंबर में खून ही खून है, कुछ और नहीं है। इसमें कोई रह सकता है, इस दिल में कोई? ये दिल में एक मिनट 70 बार धड़कता है, 70 बार खून अंदर आता है, 70 बार बाहर फेंकता है। अगर दिल में कोई रहे तो क्या होगा, क्या होगा? 70 बार बाहर जाएगा, 70 बार अंदर आएगा ना, और खून में ही नहाया रहेगा ना, इसमें कोई और चीज तो है ही नहीं, दिल में कुछ इस दिल में कुछ और नहीं है, सिर्फ एक पंप है ना, जिसमें खून का गंदा खून बॉडी से यहां पर आता है हार्ट के दाईं तरफ, दाईं तरफ से खून पंप कर देते हैं फेफड़ों में साफ होने के लिए, और जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो उस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है और ऑक्सीजन उस खून के अंदर चली जाती है, फिर साफ वाला खून हमारे हार्ट के बाएं चैंबर में आता है और वहां से खून पंप हो जाता है, साफ खून माना जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, जीवन भरा हुआ है, वो फिर खून सारी बॉडी में सप्लाई होता है। ये काम है हार्ट का, ये हार्ट की बात नहीं है। जिस दिल की हम बात करते हैं कविताओं में कहानियों में, जिसकी बाप बाबा बात करते हैं, दिलाराम, दिल वाले बच्चे, है ना, सच्ची दिल साफ दिल, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच तो बिठो नच, है ना, जिस दिल की बाबा बात करते हैं, वो दिल कौन सा दिल है? वो दिल ये दिल है, आत्मा का दिल है, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, ये दिल। और वो कॉन्शियंस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? जब मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, जब ये अनुभूति है अंदर की, ये स्मृति है मेरे अंदर, मेरे अनादि स्वरूप की और आदि स्वरूप की स्मृति मेरे अंदर है, तो ये दिल, ये आत्मा फुल्ली चार्ज है, पावन सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान का अर्थ क्या है? सत्व प्रधान माना सत्व, माना सत्व, माना सात, प्रधान माना भरपूर, सत्व प्रधान। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है तो उस स्थिति को पावन स्थिति कहते हैं। रजो माना शाम, अंधेरा, अंधेरा भी हुआ नहीं है, अंधेरा शाम जैसे हो रही है अभी ना, प्रधान माना उससे भरपूर, रजो प्रधान शाम से भरपूर, लाइट आधी हो गई है, और तमो प्रधान माना, तमो माना अंधेरा रात, और प्रधान माना अंधेरे से भरपूर। तो जब आत्मा तमो प्रधान है तो उसको पतित कहते हैं। तो अब आत्मा जब सातों गुणों से भरपूर है तो जो आत्मा का दिल है, कॉन्शियसनेस, आत्मा का दिल क्या होता है? आत्मा जो अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु है, उससे सात एनर्जी हमेशा निकलती रहती है। जैसे इस बल्ब से लाइट निकलती रह रही, नेचुरल निकल रही है, ये तो आर्टिफिशियल है, इसका बटन बंद कर देंगे तो ऑफ हो जाएगी, किंतु वो लाइट नेचुरल है, ऐसी लाइट नहीं है, स्पिरिचुअल लाइट है, आध्यात्मिक लाइट है। और वो लाइट क्या है? ज्ञान की लाइट है। ज्ञान माना सत्य की समझ की लाइट है, उसमें सत्य की समझ है। जैसे आज की मुरली में हमने सुना, एक्यूरेट याद के लिए क्या चाहिए? धैर्यता, गंभीरता और समझ। किस चीज की समझ? सत्य की समझ। ट्रुथ क्या है? मेरा सत्य क्या है? मैं कौन हूं? परमात्मा का सत्य क्या है? परमात्मा राम नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, परमात्मा हनुमान नहीं है, सत्य क्या है? जो परमात्मा है उसका सत्य क्या है? आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है? और इस सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य क्या है? इसकी समझ। तो ये लाइट आत्मा में कौन सी लाइट है? कौन सी निकल, आत्मा की लाइट निकल रही है? सत्य की समझ की लाइट निकल रही है। इसमें पवित्रता की लाइट निकल रही है, कोई फिजिकल लाइट नहीं, ऐसी लाइट नहीं, दिखाई नहीं देती वो लाइट, वो सत्य की समझ, पवित्रता की पवित्रता, शांति। पवित्रता की मैंने भाषा बात की ना, पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। किसी भी देहधारी से, लौकिक चाहे अलौकिक, उससे ना लगाव हो, ना झुकाव हो, ना प्रभाव हो, ना टकराव हो। और ड्रामा के किसी बात में भी, ड्रामा की किसी चीज में भी, जो कुछ भी हुआ अभी तक या जो हो रहा है, उस पर देख के कोई क्वेश्चन ना उठे हमारे मन में। किसी बात पे भी क्वेश्चन उठा तो क्या हो गया, क्या क्यों कैसे हुआ, तो ये भी अपवित्रता है। और पवित्रता का अर्थ क्या क्या किया हमने, और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी माना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ही ब्रह्मचारी, और मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्माचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, जैसे ब्रह्म तत्व में रह के आत्मा एक दूसरे को क्या देखती है, आत्मा ही देखती है ना, ऐसा ही हमारा आचरण अभी होना चाहिए। भले कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, सबको उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखना, यह है ब्रह्मचारी। मन में भी वही संकल्प हो, बोल भी हमारे ऐसे ही हो, बच्चे को देख के बच्चा बोल देना, बच्चे को देख के बच्चा समझ के बात करना नहीं, गरीब देख के गरीब को गरीब के हिसाब से बोलना, ये बहुत पद वाला है तो इसको पद वाले हिसाब से नहीं, सबके लिए बराबर सम्मान होना चाहिए, सबके लिए मन में रिगार्ड। वो आत्मा है, भले बच्चा है, अभी छोटा बच्चा ही है, 3-4-5 साल का ही है, कि तू है तो आत्मा, हो सकता पिछले जन्म में मेरा बाप हो, मैं उसका बच्चा हूं, है ना, तो हमारा सम्मान उसके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये है ब्रह्मचारी, है ना। और फिर ब्रह्माचारी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में 33 साल के जीवन में कैसे ब्रह्मा ने कितनी कितनी मुसीबतों का सामना किया, 300 भाई बहनों की पालना करना, हम घर में 5 की पालना नहीं कर सकते हैं, सेंटर में 100-200 स्टूडेंट की पालना करना मुश्किल लगता है, किंतु बाबा ने 300 भाई बहनों की हर चीज की पालना की, और किसी से एक पैसा लिया नहीं, किसी से कभी मांगा नहीं, और उनकी हर तरह से बहुत अच्छी पालना की। बैगड़ी काल में कितनी अच्छी, कभी एक बात में भी कोई उनको संकल्प नहीं आया कहां से होगा कैसे होगा, हर तरह की बाबा ने प्रॉब्लम्स को फेस किया। ब्रह्मा बाबा ने ग्लानी भी बहुत फेस की, क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा बाबा की बात दादी ने एक बार बताई थी हमको, बड़ी दादी ने, कि जब ब्रह्मा बाबा जब आए वहां पर, जो ऊपर ब्रिज कोठी है ना, ब्रिज कोठी जहां पर है, जहां पर जो इधर की तरफ जब हम ऐसे एंटर करते हैं ना, माउंट आबू की तरफ एंटर करते हैं, तो वहां पर ही बीच में ब्रिज कोठी पड़ती है, तो वहां पर उस कोठी में जब बाबा आए, उसके पीछे शमशान घाट है, उसके पीछे ही शमशान घाट है, तो शमशान घाट में एक बहुत सन्यासी रहते थे, साधु बाबा रहते थे, वो सुबह सुबह उठते ही बाबा को गालियां देना शुरू करते थे, ब्रह्मा बाबा को गालियां देना शुरू करते थे उठते ही, और बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, बहुत जोर जोर से, पता नहीं उनको क्या नाराजगी थी। तो बाबा के बच्चे आए होते थे, भाई बहने आए होते थे, तो बाबा को बोलते, बाबा हम चाहो तो इसको भगा दें यहां से, बाबा आपको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करता है, आपने हम तो हमने कुछ कहते ही नहीं, आप तो कभी कुछ कहते नहीं हो, हम इसको भगा देते हैं यहां से, फिर आएगा भी नहीं कभी। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे इसको कुछ नहीं कहना, जाओ इसको खाना दे के आओ। बाबा उसके लिए खाना भिजवाते थे, बाबा उसके लिए कपड़े भिजवाते थे, और उसके बाद भी गालियां देता था वो, किंतु अंत में वो काफी दिनों बाद वहां रह के फिर चला गया। तो बाबा ने कभी जो ग्लानी करने वालों की भी क्या की, सेवा की। हम ऐसा करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने, ये पवित्रता है कि अपने अंदर से इतनी शुद्धता हो कि जैसे एक फूल है, फूल कुछ भी करे खुशबू देता है कि नहीं देता है, कोई इसको मसल दे तो क्या करेगा फूल, क्या करेगा, को फूल को पकड़ के मसल दे तो क्या करेगा फूल, चुभेगा हाथ में कि मेरे को मसल रहा है तो मैं इसको चुभू तो सही, पता तो लगे इसको नहीं, बल्कि और ही ज्यादा खुशबू देता है। यह है संपूर्ण पवित्रता। भले कोई हमको कितना तंग करे, कितना हमको सहन करने का चांस हो, कितना दुखी करे, कितनी गलानी करे, कितनी इंसल्ट करे, पवित्रता की परीक्षा यहां से होती है। दादी जी कहा करते थे कि जो सच्चे होते हैं उनके बहुत टेस्ट होते हैं, क्यों, सत्यता ही पवित्रता है। सत्यता माना ही अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित होकर, दूसरा अनादि और आदि पावन सत्व प्रधान स्वरूप में स्थित होकर, फिर दूसरों से व्यवहार में आना, और संकल्प बोल कर्म में भी किसी विकार रूपी बुराई को टच ना करना, ये सत्यता है। सत्यता ही पवित्रता है। तो दादाजी, मुझे याद आता है दादाजी कहा करते थे, अगर आप सत्यता पे रहना चाहते हो, मुझे कई बार कहते थे, तो आपको बहुत टेस्ट सहन करने पड़ेंगे। झूठे बनकर रहो, कोई टेस्ट नहीं होगा। फिर दादी एग्जाम्पल देते थे कि अगर एक मटके की दुकान पर जो मटके होते हैं ना, जो बर्तन बिकते हैं, जो मटके क्रैक दिखाई देते हैं, जो मटके टूटे हुए दिखाई देते हैं, उनको कोई बजा के नहीं देखता है, क्योंकि जो साबुत मटका दिखाई देता है ना, उसको क्या करते हैं लोग, आगे पीछे नीचे साइड से बजा बजा के देखते हैं ना, बजा के देखते नहीं देखते, कोई मटका बिना बजाए लेता है कभी भी? और फिर कान पे भी लगा के देखते हैं, कान से भी देखते हैं कभी कहीं इसमें आवाज तो नहीं, आवाज आ रही नहीं कि, अगर थोड़ा भी छेक होगा तो आवाज नहीं आती है। पूरा 100% ठीक होता है ना, इंटैक्ट होता है, तो मटके के अंदर से आवाज आती है। तो इसलिए सत्यता की परिभाषा ये है, पवित्रता की परिभाषा ये है, पवित्रता वाले को सत्यता वाले को बहुत सहन करना होता है, और यही उसका टेस्ट है। बिना जब भी हम सत्यता के मार्ग, हमने बाबा के बच्चों ने हमने सत्यता का मार्ग अपनाया है। और एक और बात, एक और महानता है इस बात की कि सत्यता वाले को डर कभी नहीं लगता है। जहां सत्यता है वहां निर्भयता है, अर्थात जिसके अंदर पवित्रता है उसको सूक्ष्म वतन में जाना, परम धाम में जाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन बेसिकली कुछ और नहीं है, बाबा की दिल है। सूक्ष्म मना पवित्र है ना, पवित्र है बाबा का स्थान जो है, वो इसका ज्ञान की लहरें, पवित्रता की लहरें, शांति की लहरें, रूहानी प्रेम की लहरें, अतिंद्रिय सुख की लहरें, आनंद की लहरें और शक्तियों की लहरें वहां सदा रहती है। और ऐसे बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, शिव बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर के जाके बैठ गया, संपूर्ण फरिश्ता बनकर के बैठ गया, और उस संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा के दिल में, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस में कौन आके बैठ गया? शिव बाबा आके बैठ गए। तो ये बन गए बाप दादा। अब ऐसे बाप दादा की गोद में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें भी सच्चा बनना पड़ेगा, हमें भी बाबा का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। और पहली पहली बाबा की आज्ञा क्या है? क्या है? पवित्र भव, योगी भव। तो जितनी जितनी पवित्रता धारण होती जाती है, उतना उतना हम योगी बनते जाते हैं। जितनी पवित्रता की डिग्री कम, उतना योग की डिग्री भी कम। जितनी पवित्रता की डिग्री ज्यादा, उतनी योग की भी डिग्री ज्यादा। और जिसकी संपूर्ण पवित्रता है, वो सदा बाबा के दिल में, अर्थात बाबा की गोद में। तो निर्भयता की परिभाषा क्या है? निर्भयता माना जिसकी इसकी एक आंख में मुक्ति हो, दूसरी आंख में क्या हो? जीवन मुक्ति। कौन सी आंख में? दाई वाली में, बाई वाली में? दाई वाली आंख में मुक्ति, बाई आंख में जीवन मुक्ति। इस शरीर की बात नहीं है, बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं। तो आत्मा की दो आंखें होती हैं, एक बुद्धि और एक मन। तो बुद्धि में, बुद्धि रूपी आंख में मुक्ति अर्थात शांति धाम, और जो मन रूपी आंख है उसमें सदा जीवन मुक्ति, अर्थात मन में उसके ही अपना लक्ष्य, लक्ष्य क्या है मेरा, वो समाया रहता है। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है? मैं अभी ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण से मुझे क्या बनना है? फरिश्ता बनना है, सो देवता बनना है। अर्थात उसकी मन में सदा स्वर्ग समाया रहता है, सुखधाम। तो बुद्धि में शांति धाम और मन में सुखधाम समाया रहता है। तो ये हमारी जब वो निर्भय है ना, जिसकी बुद्धि में कौन है, सुखधाम है, शांति धाम है, और मन में सुखधाम है, उसको डर लगेगा किसी बात से? उसको डर लगेगा ही नहीं। तो मैंने देखा है जीवन में कि सचमुच में अगर हम अपनी सत्यता में रहते हैं, पवित्रता में रहते हैं, हमको किसी भी बात का डर नहीं लगता। भले सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरी तरफ बाबा है, मैं सत्यता पे हूं, तो मुझे डर नहीं लगता है। ये आप करके देखो, है ना। जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा की टीचर बहनें सेंटरों पे रहती हैं, पूरे शहर के बीच में रहते हैं ना, सब तरह के लोग होते हैं, किंतु उनकी सत्यता, उनकी पवित्रता उनकी रक्षा करती है। सेंटर पे हजार तरह के लोग आते हैं, कैसी कैसी वृत्ति वाले लोग आते हैं, उनकी पवित्रता उनकी रक्षा करती है। नहीं ऐसा होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है ना, बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं कि जितनी सत्यता और पवित्रता हमारे अंदर होगी, उतना ही हमारा आभामंडल बड़ा होता है। और जितना आभामंडल बड़ा होता है, जितनी दूर तक आपका आभामंडल है, मान लीजिए किसी का आभामंडल 1 फुट है, किसी का 5 फुट है, किसी का 8 फुट है, योग में तो बढ़ के वो 16-17-50 फुट भी हो जाता है, 60-70-80 फुट भी हो जाता है। तो जितना हम योग में रहते हैं, जितना तपस्या में रहते हैं, जैसे जब ब्रह्मा जब शिव बाबा आते हैं हॉल में, आते हैं डायमंड हॉल में आते हैं, शिव बाबा की पधरामणी होती है, बाप दादा की पधरामणी होती है, तो पूरा हॉल कैसा हो जाता है, जितने भी बैठे हो सब अशरीरी हो जाते हैं, है ना। सेम वे जब बाबा से हम कंबाइंड हो जाते हैं, तो हमारा आभामंडल बहुत बड़ा हो जाता है। और उस आभामंडल, माना आभामंडल का कुछ और अर्थ नहीं होता, आभामंडल का अर्थ होता है ये जो आत्मा की 7 ऊर्जाएं हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियां, ये आभामंडल, ये चारों तरफ फैल जाती है। और उस आभामंडल के अंदर आने वाला कोई व्यक्ति भी, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, आतंकवादी हो, उसका मन बदल जाता है, उसके मन की भावनाएं परिवर्तन हो जाती हैं। इवन अगर भूकंप भी आए, उसके एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, अगर भूकंप भी आ जाए, तो आप यहां बैठे हैं और यहां पर मान लो बाबा आए हैं, या आप अपने आपका आभामंडल बहुत बड़ा है, तो भूकंप वहां तक आएगा कि तू वहां से जहां आप तक आपका आभामंडल है, उसके बाद वो रुक जाएगा और वापस चला जाएगा। तो आपको, आपके पास जो बैठे हुए सभी भाई बहने हैं, वो बच जाएंगे, बाकी सब आसपास टूट जाएगा। भुज के मकान का भी एग्जाम्पल ऐसा ही ना, भुज में जब भूकंप आया था, क्योंकि वहां तपस्या कर रहे सभी, तो अंत में यह प्रत्यक्ष होगा। अभी तो बहुत भूकंप आने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो अंत में बाबा के बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसी पवित्रता के बल पर, इसी सत्यता के बल पर सुरक्षित रहेंगे। अब पवित्रता की प्योरिटी की पर्सनैलिटी क्या है, कहते दुनिया में जो पर्सनैलिटीज होती है, जितनी पर्सनैलिटीज होती हैं, वो उनका क्या होता है, उनका एक एक बोल, एक एक कर्म, उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि कैसे होती है। आज की दुनिया की पर्सनैलिटी, मान लीजिए हम नरेंद्र मोदी की बात कर लें, या किसी एक कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसको दुनिया सब जानती है उसकी बात करें, उसका एक एक बोल कैसा होता है। कुछ गलत बोले तो क्या हो जाएगा, उसकी दृष्टि किसी के प्रति गलत पड़ जाए तो क्या होगा, उसका वृत्ति किसी के प्रति गलत तो कैसा हो जाएगा। उसका एक एक टाइम अपॉइंटमेंट है उसकी ना, सुबह 4 बजे उठना, नहा धो के तैयार होके उसको आसन वासन जो करता है वो करता है, उसके बाद तैयार होके वो करता है, फिर तैयार ऑफिस में 8 बजे पहुंचता है, ये करना है। एक एक टाइम फिक्स है, एक एक मिनट फिक्स है उसका, इतने से इतने बजे वहां मीटिंग है, इतने से इतने बजे वहां भाषण है, इतने बजे वहां जाना है, इतने बजे मीटिंग है। ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले क्या होते हैं, वो उनका एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म, उनका बोल चाल, उनका कर्म, संबंध संपर्क में आना, खाना खाना, चलना, हर चीज में पवित्रता होती है। पवित्रता परिभाषा से होती है, उसमें किसी से भी लगाव नहीं होता है। सबसे मिलता, सबसे न्यारा और सबसे प्यारा, किसी के प्रति भी जरा भी लगाव नहीं, किसी बात में क्या क्यों कैसे नहीं। वो कभी भी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति कभी भी छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट, इधर उधर की बातों में वेस्ट करते हैं क्या? नहीं वेस्ट करते। ये जो इसी तरह से हम ब्राह्मणों के लिए अपवित्रता की बातें कैसी हैं? बेकार बातें, काम की बातें, कोई काम विकार की बातें, क्रोध की बातें, लोभ मोह अहंकार की बातें, चिंता भय की बातें, है ना, आलस्य की बातें, अलबेलेपन की बातें, जल्दीबाजी करने की बातें, ईर्ष्या द्वेष की बातें, कंपैरिजन कंपटीशन करने की बातें, हमारे लिए क्या है? ये कैसी बातें, कैसी बातें? बेकार बातें हैं, काम की बातें हैं, हम ब्राह्मणों के जीवन में तो नहीं होनी चाहिए ना। तो हमारा ध्यान पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले उसको ही कहेंगे कि हमारा ध्यान जिनका इन बातों पर ध्यान ना जाए, उनका हर संकल्प, हर श्वास, हमारा हर घंटे घंटे का भी चार्ट हो, हमारे घंटे का भी चार्ट हो, अपने समान हो, हर घंटे के समान हो, हमारा एक घंटे में कितना मिनट हमें याद की रही कि नहीं रही। बाबा कहते हैं वारिस क्वालिटी की आत्मा कौन सी? वारिस माना जिसका हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में बाबा समाया हो और बाबा की सेवा समाई हो, वो है वारिस क्वालिटी की आत्मा। अगर कोई और बात समाई हुई है तो हम वारिस क्वालिटी नहीं बन सकते हैं। बाबा समाया हो, यज्ञ समाया हो, बाबा की सेवा समाई हो, वो है वारिस क्वालिटी की आत्मा। तो हमें इसके लिए बहुत बहुत अटेंशन रखने की आवश्यकता है, और मुश्किल जरा भी नहीं है। चलो मैं पवित्रता की रॉयल्टी की और मैं दो मिनट बात कर लूं। रॉयल्टी माना क्या? जैसे हमारी रॉयल्टी क्या है, अनादि स्वरूप की हमारी रॉयल्टी क्या है? परम धाम में 800 करोड़ आत्माएं हैं, और 800 करोड़ आत्माओं में से हम जो बाबा के बच्चे हैं, 108 बच्चे हैं जो विजय माला के दाने हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, उनकी चमक सबसे ज्यादा होती है। 16,000 की चमक भी उन बाकी सबसे बहुत अच्छी है, 9,00,000 की चमक भी उनसे बहुत अच्छी है, बाकी सबसे बहुत अच्छी है, रॉयल हैं, रॉयल चमक होती है उनकी। और फिर देवता स्वरूप में, आदि देवता स्वरूप में हमारी जैसी रॉयल्टी किसी की होती नहीं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, किसी भी को भी संपूर्ण निर्विकारी कभी नहीं कहते हैं। कितने ही बड़े संत महात्मा हो, कितने भी बड़े से बड़े पुरुष हो, उनको कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, किसी को 16 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, किसी को अहिंसा परमो धर्म नहीं कह सकते, सर्वगुण संपन्न नहीं कह सकते। ये हमारी रॉयल्टी है, हम ही तो बनने वाले हैं, और कौन बनेगा, हमें ही बनना है ना। तो ये रॉयल्टी, ये नशा, इवन मध्य स्वरूप में भी देखो अपने को, तो मध्य स्वरूप भी हमारा कैसा है, कितना रॉयल्टी वाला है, कितनी अच्छे से पूजा होती है। आज भी देखो लक्ष्मीनारायण की पूजा देखो कैसी पूजा होती है ना, आज भी श्रीनाथ द्वार पर जाके देखो कैसे पूजा होती है, कितना, कितनी सफाई से, कितने ध्यान से उनका भोजन बनाया जाता है, कितने कपड़े, हमने तो घरों में भी देखा लोगों के यहाँ पूजा होती है, लोग अपने घर में लक्ष्मीनारायण की फोटो रखते हैं, नारायण की फोटो रखते हैं, कोई कृष्ण की फोटो रखते हैं, उनके कपड़े रोज बदलते हैं, कपड़े रोज वो माताजी बैठ के कपड़े बनाती रहती हैं, उनके सारा दिन कपड़े बनाती है, सुबह सुबह उसको नहला धुला के फिर पहनाती हैं। अच्छे अच्छे घरों में देखा है, अपने हाथ से नहीं, किसी और से बनवाते नहीं है, अपने हाथ से उसका छोटे छोटे कपड़े बना के सुबह सुबह कपड़े पहनाते हैं, नए कपड़े रोज, और एक रंग के नहीं, अलग अलग रंग के। मैं कभी किसी घर में गए थे हम लोग कलकत्ता की तरफ, तो वहां जाके मैंने देखा, वो दिखाया मुझे उन्होंने, और वो कपड़े किसी को दोबारा नहीं पहनते वो कपड़े, वो दोबारा कपड़े फिर दान कर देते उस छोटे छोटे कपड़ों को ना, भर के रखे हैं, उसके ट्रंक भर के रखे हैं वो कपड़े, ऐसे किसी को देते भी नहीं है ज्यादा। तो अभी तक कितनी कितनी पूजा होती है, कितनी विधिपूर्वक पूजा होती है। और फरिश्ते स्वरूप के कायन तो देखो क्या है। तो इतनी रॉयल्टी, तो रॉयल्टी ऐसी रॉयल्टी आएगी कहां से, प्योरिटी की रॉयल्टी कहां से आएगी, रियलिटी से आएगी। जितनी हम सत्यता में रहेंगे, जितनी हम सत्यता में रहेंगे, जितनी रियलिटी मैंने सत्यता, जितने अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे, अर्थात इसको मैं बोलता हूं एबीसीडी ना, सत्यता माना एबीसीडी भी ना, ज्ञान माना सत्य की समझ माना एबीसीडी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन माना संबंध, आत्मा परमात्मा का संबंध, और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला। तो दिन रात जितना हम इसका मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, इस बाबा की मुरली का एक एक मनन माना रिवाइज करो, बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करना, चिंतन माना उसकी गहराई में जाना, मंथन माना मैं कैसे करूं, कैसे बनूं, ये ऐसे होता है कई बार हम मक्खन दूध दही दही जमाते हैं ना, तो दही को हम पहले तो हम जमा लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको, फिर भी मक्खन निकलता नहीं है। कई बार जो पुराने अनुभव होगा उनको, अभी तो आजकल दही जमाना, आजकल मक्खन निकालना ही शायद बंद हो गया होगा लोगों का घरों में, फिर भी पुराने गांव वाले तो जानते हैं कैसे मक्खन निकाला जाता है। मक्खन निकलेगा ही नहीं, आप ऐसे ऐसे करते रहोगे तो मक्खन निकलेगा ही नहीं, फिर क्या करते हैं, फिर वो उसमें बर्फ डालते हैं ना, ठंडा करते हैं और ठंडा करते हैं, फिर जाके मक्खन निकलता है। तो चिंतन और मंथन में ये फर्क है, चिंतन करते हैं हम कॉन्शियस चिंतन करते हैं, मनन भी कॉन्शियस करते हैं, जैसे मुरली के पॉइंट को हम बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, आज बाबा ने ऐसे कहा, आज बाबा ने ऐसे कहा, आज बाबा ने जैसे बात की, धैर्यता की, गंभीरता की, समझ की बात की, एक्यूरेटी, आज करंट आएगा, करंट आएगा तो आत्मा पावन सत्व प्रधान बनेगी, विक्रम विनाश होंगे, जैसे यही लाइन को हम लें, तो इसको मैंने बार बार रिवाइज किया, ठीक है। फिर चिंतन, चिंतन माना अब इसको मैं गहराई में जाऊं, धैर्यता माना क्या, कई बार हम सोचते हैं जल्दी से हम विक्रम, अभी हम योग करने बैठे, आधा घंटा योग किया, पावरफुल, विक्रम विनाश हो जाए, ये आदत मेरी परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाएगी आधे घंटे में। 2500 साल का जो मैंने पाप किए हैं, 2500 साल जिस चीज को पकाया है अंदर, रिकॉर्ड हो गई है, वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी नहीं, टाइम लगेगा। जैसे SMS होते हैं ना मोबाइल में, तो SMS की फैसिलिटी होती है, डिलीट ऑल, हमारे यहां डिलीट ऑल की फैसिलिटी नहीं, हमारे कर्मों की, एक एक SMS खुलता है, डिलीट करो, पढ़ो, डिलीट करो, एक SMS फिर दूसरा खोलो, डिलीट करो, एक SMS खोलो फिर डिलीट करो, एक एक डिलीट होता है। तो धैर्यता रखने की आवश्यकता है, टाइम लगेगा, और सीरियस, गंभीरता, सीरियस होकर करना पड़ेगा, ये नहीं कि मस्ती भी करते रहो, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी खाओ, बाजार में जाओ, होटल में जाओ, यहां खाओ वहां जाओ, सब जगह जो मर्जी करो, और फिर हो जाए कि हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, ये तो हमें करना ही पड़ता है, निभाना ही पड़ता है, सीरियस होकर करना पड़ेगा। अगर सचमुच में भी देवी देवता बनना है, प्रजा नहीं बनना है, हमें कम से कम 16108 में आना है, राजा रानी सिर्फ 108 16108 ही बनते हैं, त्रेता के अंत तक 16108 ही बनते हैं रॉयल फैमिली में आने वाले, और कलयुग के अंत तक आने वाले ये 9 लाख जो प्रजा है ना, वो भी राजा बनती है कलयुग के अंत तक। एक मैंने मुरली में राज पढ़ा था कि 9 लाख भी जो पहली प्रजा है वो भी कलयुग के अंत तक आते आते राजा बन जाती है, उनका भी गायन 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 होता है, पूजन नहीं होता है, गायन होता है। तो अगर हम ऐसी तपस्या करेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे तो हमारी रॉयल्टी, ये रॉयल्टी आएगी, और रियल्टी, रियल्टी के आधार पे आएगी, उसका साधन है मुरली। तो मनन चिंतन मंथन, मंथन माना मक्खन निकालो, और सिमरण माना उसको बार बार याद नहीं करना है, सिमरण माना उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कार्य करते हुए याद, स्मृति में रखना है, उसी स्मृति में रहकर कर्म करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, वो सिमरण। तो मुरली, जिसके अंदर मुरली बजेगी, मुरली का मतलब यह है दिन रात अंदर मुरली बजती रहे, मुरली बजती है ना, अंदर मुरली बजती रहे, मुरली अंदर अंदर चलती रहे, वो मुरली ही साधन है अपने अंदर से सारी बुराइयों को निकालने की, संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी बन जाएगी हमारा हर सेकंड, हर मुरली स्थूलता से शुरू होती है, कागज पे है, मोबाइल में है, उसको आप स्थूल में रिवाइज करो, फिर मन के अंदर चिंतन करो, फिर दिल से उसका मंथन करो। मन से चिंतन करो, दिल से उसका मंथन करो, और फिर जब मंथन मक्खन निकल आए उसको फिर कार्य में लगाओ। तो हमारे नए संस्कार बन जाएंगे, हमारे हर बोल में देखना, पढ़ना, सुनना, बोल, खाना पीना, चलना, सब में हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। पर्सनैलिटी माना हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल होने लगेगा, हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी अपने आप ही, और रॉयल्टी हमारा हमारा क्या होगा, हर चीज में सत्यता दिखाई देगी। और सत्यता कभी छिपनी, सत्यता का सूरज कभी छिपता नहीं है, सत्यता वाले में सभ्यता भी होती है, उसकी सभ्यता दिखाई देगी, चलने में, फिरने में, बोलने में, खाने में, हर चीज में सभ्यता दिखाई देगी। तो इस तरह से जब जितना इसका साधन है मुरली, और उस मुरली वाले के जैसे उस दिन मुरली में था, जो मुरली वाले ना, जो मुरली सुनते हैं, मुरली अटेंशन सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरण में बिजी रहते हैं, उनका विश, उनका जो है वो क्षीर सागर में विष्णु के समान क्षीर सैया पर विराजमान रहते हैं, और उनके लिए हर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, मतलब हर समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है, और उनको सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, और सदा सर्वशक्तियां उनके अंदर अपने आप धारण हो जाती हैं, और मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आती जाती है। ओम शांति।